بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور رمضان المبارک کے 14ویں دن میں اور پروگرام صبح زندگی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔
میں بھی سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اپنے پیارے پیارے ناظرین کی خدمت میں، اور امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہمارے ہفتے کا موضوع بڑا ہی اہم موضوع چل رہا ہے اور اس میں ہم آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، facebook.com/sutmorningshow پہ، اور موضوع ہمارا چل رہا ہے شب قدر، جو ہے وہ رمضان کا دل ہے۔
بالکل مرکز، آپ جو کچھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس نقطے پر مرکوز ہوتی ہے نگاہ، وہ یعنی آپ ہر شعبے میں آپ جائیے تو ایک کوئی مرکزی اس کا یعنی نقطہ آپ کو نظر آئے گا اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی کام ہوتے ہیں۔ تو ماہ مبارک رمضان کا بھی ایک مرکز ہے، ایک قلب ہے، ایک دل ہے، جس کو نظر میں رکھتے ہوئے باقی کام ہم انجام دیتے ہیں۔ اگر ماہ رمضان میں ہم صحیح طور سے وقت کرتے ہیں، خدا توفیق دیتا ہے کہ عبادت کریں، یقیناً تیاری ہوتی ہے ان چند شبوں کے لیے جنہیں شب قدر کہا جاتا ہے۔
بالکل صحیح، اور حسن ابھی وقت ہوا ہے ہمارا کہ ہم لوگ دعا ملاحظہ فرمائیں، 14ویں دن کی، رمضان کے 14ویں دن کی دعا آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں، اور اس کے بعد پھر ہم پروگرام صبح زندگی کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
جی ناظرین، اس دعا میں اگر آپ نے دیکھا ہو، مسلمین کی عزت کی بات ہے۔ تو آج کل کے دنیا میں مسلمین کی عزت کہاں پر ہے؟ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے مسلمان چپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور غزہ پٹی میں، فلسطین میں بہت ہی عظیم ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے حق میں، ہم سب چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا رمضان ہمیں یہی سب سکھاتا ہے؟ آپ کے ہم رائے کے منتظر ہیں facebook.com/sutmorningshow پر۔
بالکل، بڑی اچھی، بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا حسن، اور کہا جاتا ہے کہ اکثر لوگ ایسے موضوعات پہ جو ان کا جواب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے سے کیا تعلق اور ہم کیوں اس مسئلے میں پڑے، تو وہ کہتے ہیں کہ آگ جب کسی جگہ پر لگتی ہے تو آہستہ آہستہ پھیلتی پھیلتی ہر جگہ پر لگ جاتی ہے، تو اس وقت کے بارے میں، ایسے وقت کے بارے میں بھی سوچا جائے کہ خدا نہ کرے کبھی وہ ایسا وقت جو ان پہ ہے وہ ہمارے پر بھی آ سکتا ہے۔ بالکل، بہرحال ہمارے ساتھ ڈاکٹر جعفر رضی خان اسٹوڈیو میں ہوں گے، اور انشاءاللہ رمضان کے بارے میں اور رمضان کے دوران طرز زندگی کے بارے میں ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی جی،
اور مشاہد عالم رضوی صاحب سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔
صحیح،
اور ہفتے کے موضوع کے حوالے سے، یعنی رمضان کے بیچو بیچ، بلکہ یعنی کہہ سکتے ہیں مرکزی کردار ہے شب قدر کا
جی،
انشاءاللہ اس حوالے سے، شب قدر اسی ہفتے میں درپیش ہے، تو اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے۔ تو آج کا پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ چلتے ہیں ہم لوگ
ایک اور
دعا ماہ مبارک رمضان کی ایک اور دعا دیکھتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس کے بعد۔ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیا، بہت تیزی سے ہم لوگوں کے یہاں پہ یعنی تعداد بڑھ رہی ہے لائکس کی، اور تمام آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کا پروگرام دیکھتے ہیں، اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، تو اسی لیے ہم لوگوں نے آج بلایا ہے، اور اس موضوع پر جس پہ خرم نے کہا تھا کہ آج کا جو ہم لوگوں کا موضوع رہے گا رمضان، ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، ڈاکٹر جعفر رضی خان کو اس وقت وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ آج ایران میں حیا اور حجاب کا قومی دن منایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے تہران میں ایک نمائش منعقد کی گئی ہے، تھوڑا بہت اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، کیا نہیں ہو رہا ہے، تو آج کا پروگرام بھی ضرور دیکھیے گا۔ چلتے ہیں فی الحال خرم کے پاس۔
بہت شکریہ حسن، بالکل جی، ڈاکٹر جعفر رضی خان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پہنچ چکے ہیں، اور بڑے اہم موضوع کے پر ہم آج روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ ماہ رمضان کے ہماری زندگیوں پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔
بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔
کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟
بس جو ہے وہ دیکھیے کہ پازیٹیو انرجی کے ساتھ
زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، مثبت انرجی تو ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی آج کل بہت ضرورت پڑ رہی ہے۔
بالکل۔
ڈاکٹر صاحب روزے کیسے گزرے ہیں آپ کے؟
دیکھیے یہ بھی جو ہے وہ ایک فرصت ہے،
صحیح،
جو ہے جس میں جو ہے ہم
مثبت انرجی لینے کی
سیکریفائسز دکھانے کی، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کی،
ٹھیک،
تو خود یہ ایک سوشل اور ریلیجیس اپارچونیٹی ہے جو خدا کی طرف سے ہمارے سوسائٹیز کو جو ہے۔
بالکل صحیح، یہ اپارچونیٹی کا لفظ آپ نے استعمال کیا، انشاءاللہ اس پہ جو ہے میں پوچھوں گا کہ آپ نے اپارچونیٹیز کو کیوں کہا، بڑی اہم بارہ یہ نقطہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑی دلچسپ چیز دیکھنے کو ملتی ہے कि भाग दौड़ हो रही है दुनिया में, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई जॉब के लिए जा रहा है, कोई अपने बिजनेस पे, कोई दुकान पे जा रहा है, कोई अपनी फैक्ट्री में जा रहा है। अच्छा, वही शख्स जो इतनी भाग दौड़ कर रहा होता है, फैक्ट्री का मालिक है या एक मिल चला रहा है, एक सुपर स्टोर चला रहा है, पर मुख्तलिफ काम, उसी को देखते हैं आप कि माह रमज़ान में वो अपनी दुकान के सामने ही या अपनी फैक्ट्री के सामने ही जो है रफ्तार के टाइम पे अफतारी करवा रहा है गरीब लोगों को। ये कैसा असर है माह रमज़ान का कि ऐसे ऐसे लोग जो पूरा साल पैसे के पुजारियों की तरह उनके पीछे भागते हैं, लेकिन माह रमज़ान में एक तब्दीली से आ जाती है।
देखिए, ये बेसिकली जो है रोज़ा और रमज़ान की जो है वो ब्रॉडर फिलॉसफी है,
ठीक है,
जो इसके पीछे जो है एक विजडम जो है वो छुपी हुई है।
सही।
और ये इसमें हम ये करते हैं कि खुद जो मंथ होली मंथ ऑफ रमज़ान है
जी।
या ब्लेस्ड मंथ ऑफ रमज़ान, इसमें ये जो है हम बेसिकली जो है वो डिवाइन वैल्यूज़ की जो है वो प्रैक्टिस करते हैं,
ठीक है,
एक यानी एक्सरसाइज है डिवाइन वैल्यूज़ की। वो डिवाइन वैल्यूज़ क्या है, उसमें जो ये है, एक तो ये कि सेक्रीफाइसेस शामिल है,
ठीक है,
दूसरा ये है कि जो है जिसे ये कहना कि खर्च करना दूसरों के लिए,
ठीक है,
कि एक इंसानी मुआशरे की सबसे बड़ी जो कलमेटी या जो सबसे बड़ी अभी आफत और मुसीबत है वो यही है कि अगर किसी के पास जो है वो पैसा है तो उसको पाइल करता जा रहा है,
जमा
अगर कोई दौलत सर्वत जो कुछ है उसको जमा कर रहा है,
डबल ट्रिपल करने के चक्रों
चक्रों में। तो इसमें यानी जो मुआशरे के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो ठीक नहीं है,
सही तरीके से तकसीम
नहीं हो रही, खा वो जो है हमारी फैमिलीज को हमारे मुआशरे को जो है मुतासर कर रही है, यानी मुआशरों के अंदर जो है वेल्थ अंदाजे के मुताबिक है बल्कि ज़रूरत से भी ज़्यादा मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि वो जो है कुछ लोगों ने उनको अपने हाथों में ले रखा है,
ठीक है,
और ये वो चीज़ है जिसको जो है कोई डिवाइन रिलीजन इंक्लूडिंग इस्लाम जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता,
ठीक है।
इस्लाम तो बाकायदा जो है वो इसी वजह से रोज़े की एक ही वजह है कि अफराद जो है अपनी सेल्फ प्योरीफिकेशन करें, यानी जब आप सेल्फ प्योरीफिकेशन करते हैं अपनी जो ख्वाहिशात है उनको जो है वो एक मॉडरेशन के लेवल पे लाते हैं, तो
है।
उसमें ये होता है कि आपके अंदर जो है एक जज्बा पैदा होता है, एक स्पिरिट पैदा होता है जिसे हम जो है वो टेक्निकली आप कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल फ्रीडम होती है,
कि इंसान का एहसास है,
आज़ादी का, इंसान अपने आप से जो है अपने लिए एक आज़ादी का एहसास करता है, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल फ्रीडम, जो डिवाइन जो खुदा ने हमें दिया, यानी हम किसी जो है पैसे के जो है वो स्लेव नहीं है,
ठीक है,
हम जो है वो शोहरत के स्लेव नहीं है, हम जो है तो रोज़े रखने के बाद और रमज़ान में जो है जो इबादत है या जो चीज़ें भी है तो उससे ये होता है कि आपके अंदर एक स्पिरिचुअल फ्रीडम का एहसास होता है,
बिल्कुल सही।
और जब आप स्पिरिचुअल जो सोशल फ्रीडम्स है वो वही शख्स जो है उनको सेपरेट कर सकता है जो एक्चुअली या जिसके अंदर जो है स्पिरिचुअल फ्रीडम ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी हो, तो
है?
जब हमारे अंदर ये एहसास होता है तो फिर जो है हम जो मुआशरे की मुख्तलिफ लेयर्स हैं, मुआशरे की जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की क्लासेस हैं उनकी हेल्प के लिए जो है हम जो है वो
चल पड़ते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात की यहाँ पर रूह की आज़ादी
जी,
आज़ाद हो जाती है हमारी रूह, जिसमें तो ज़ाहरी तौर पे हमें पूरा साल देखने मिलता है आज़ाद है,
यानी हमारी ख्वाहिशात जो हैं जो हद से बड़ी हुई है उनको जो है एक महार होती है,
ठीक है, रोका जाता है
उनको जो है, यानी एक जो है उनमें मॉडरेशन आती है, ये तो नहीं कहते
नॉर्मल लेवल पे,
क्योंकि जो डिवाइन रिलीजन इंक्लूडिंग इस्लाम जो है वो आपके जो अंदर जो ख्वाहिशात हैं उनकी रिस्पेक्ट करता है और उनके जो है फुलफिल होना जो है वो
ज़रूरी है,
नॉर्मल हवाले से जो तरीके इस्लाम ने बताया उसके लिए ज़रूरी है, जैसे हमारी खाना एक हमारी नीड है, पीना हमारी एक नीड है, लेकिन इस ख़ास महीने में ये चीज़ें जो है ये कहा जाता है कि आप खाने के लिए फलां टाइम से फलां नहीं करेंगे, इसके अलावा फ़िलासफ़ी ये है कि आप किसी के जो है वो इल्विशर नहीं बनेंगे, आप किसी की गिबत नहीं करेंगे, आप किसी के वो जो है
बुराइयों से दूर रहे। अच्छा यही डॉक्टर साहब, ये जो बुराइयों से दूर होना है ये बड़ा अहम यहाँ पर नुक्ता है कि ये क्या, यही मैं पूछना चाह रहा था कि क्या होता क्या है कि वो धूल हमारे दिलों के ऊपर आई हुई है, और हमारी जहन के ऊपर छाई हुई है, उसको कैसे हटा दिया जाता है और एकदम से हम जो हैं वो सही रास्ते की तरफ आ जाते हैं। इसमें हम इंशाल्लाह आपसे कमेंट लेंगे, लेकिन यहाँ पर छोटा सा हमने डॉक्टर साहब जाना है थोड़ी देर के लिए हसन के पास, देखते हैं हसन हमें कहाँ पर लेके जा रहे हैं, उसके बाद गुफ्तगू हम जारी रखेंगे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, बहुत ही अहम गुफ्तगू आप लोगों की चल रही है। और एक दो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ अपने नाज़रीन को कि एक तो माहिर मुबारक रमज़ान में, अगर अगले पिछले हफ्ते आप लोगों को याद हो तो इस हवाले से हमने आपको बताया था कि एक काम जो हम कर सकते हैं और माह मुबारक के अहदाफ में से शायद एक है वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, अपने माहौलियात को नुकसान कम पहुंचाएं। तो एक काम आप ये कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर आप कहीं पे भी जाएं कि कहीं इफ्तार पे बहुत ही ज़बरदस्त दावत है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो कोशिश करें बजाय हर आदमी एक गाड़ी ले कर जाए, चंद लोग एक गाड़ी में आ जाएँ, माहौलियात को नुकसान कम पहुंचेगा इसके ज़रिए, एक गाड़ी बस जाएगी, धुआं कम होगा, हर लिहाज से आप देखें बेहतर होगा, आप इतने सारे लोगों की एनर्जी ज़ाया नहीं जाएगी। तो ये काम ज़रूर करिएगा और माहौलियात को नुकसान ना पहुंचाना भी यकीनन सवाब जारिया होगा आप सबके लिए। तो एक काम आप ये कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा माह मुबारक के रमज़ान के हवाले से, वो ये है कि हम लोग कोशिश करनी चाहिए जो खाने पीने के जो आइटम्स होते हैं उसको भी महदूद करें जहाँ तक मुमकिन हो कि वो हम पर सवार ना हो, बल्कि हम उन खानों पर सवार हो जाएं। अपने भूख पर काबू करना वो भी माह मुबारक रमज़ान के अहदाफ में से। तो आज का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, इस वक्त 7:47 हो रहे हैं तेहरान के वक्त के मुताबिक। चलते हैं एक रिपोर्ट देखते हैं ईरान के एक बहुत ही बेहतरीन आर्ट की, तजहीब उसका नाम है।
من آمنه فرشیان هستم.
میرا نام آمنه فرشیان ہے اور 12 سال سے میں تذہیب کا کام کر رہی ہوں۔ تذہیب اور نگارگری کے شعبوں میں کام کرتی ہوں۔ یہ نمائش جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری اور میرے ساتھیوں کی 12 سالہ محنت کا نتیجہ ہے، جنہوں نے نگارگری، تذہیب، گل مرغ، تشعیر اور منیچر کے شعبوں میں کام کیا ہے۔ تذہیب کو بدی اور زیبا نقوش کا مجموعہ کہا جا سکتا ہے کہ تذہیب کے ماہر اور ہنرمند مذہبی، علمی، ثقافتی، تاریخی اشعار کے دیوان اور مختلف قطعات کی خوبصورتی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فن تذہیب کے اساتید اس ہنر کو کتابوں کے مختلف حصوں کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنی سرزمین کے جاویدان ادبی لٹریچر اور مذہبی متون کو ظاہری حسن اور خوبصورتی عطا کریں۔ جن آثار کو میں نے یہاں نمائش کے لیے پیش کیا ہے وہ تقریباً قابل قدر قرار دیے گئے ہیں اور ان کا انتخاب قرآنی اور عام نمائشیں جو تہران میں منعقد کی جا رہی ہیں سے کیا گیا ہے۔ ایک منیچر آرٹ جو میں نے یہاں نمائش میں پیش کیا ہے شاہنامہ تہماسبی کا حصہ ہے اور یہ ٹیکنیک 10th century کے صفوی دور سے متعلق ہے۔ جتنے آثار اس نمائش میں پیش کیے گئے ہیں ان میں قدیمی ٹیکنیک کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان آثار میں جن ٹیکنیک کا استعمال کیا گیا ہے ان میں 70% گویچے، 10% واٹر کلر اور 20% ایکریلک شامل ہیں۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے یہ کوشش کی ہے کہ جن کاموں میں ہم نے قدیمی ٹیکنیک کا استعمال کیا ہے ان میں قدیمی اصولوں کی رعایت کی جائے، اور ان 12 سالوں میں ہم نے جو کوشش کی ہے اور جو ہمارا تجربہ تھا وہ پرانے آثار، ہنر، قرآنی کتابوں اور خطی نسخوں میں موجود فن کا احیاء ہے جو ہمارے کاموں میں نمایاں ہے، اور جو لوگ تخصصی نگاہ سے ان آثار کو دیکھیں گے وہ ضرور ہماری بات کی تائید کریں گے۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ تقریباً 100 قرآنی کتابوں اور خطی نسخوں کی ہم نے مرمت کا کام انجام دیا ہے۔ میں نے اور میرے دوستوں نے کرسمس کا کام کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے مختلف شعبوں میں قدیمی فن و ہنر کو زندہ کیا ہے، اور ہمارے کام کے شائقین کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو کلاسک آرٹ کو پسند کرتے ہیں، اور اسی طرح ان افراد کا گروہ ہے جو قدیمی ہنر اور فن کی اہمیت سے واقف ہیں۔ اور یہ نمائش جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس نمائش کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تہران میں منعقد ہونے والی ایک بڑی اور با اہمیت نمائش ہے، چونکہ ہر وہ فرد جس کے آثار کی یہاں نمائش لگائی گئی ہے وہ اپنی فیلڈ میں مصروف ہے اور اپنے کام اور ہنر میں کافی دقت سے کام لیتا ہے۔ ان افراد نے جن نمائشوں میں شرکت کی اور جس طرح انعامات حاصل کیے ہیں ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ افراد اپنے اپنے فن میں نمبر ون ہیں۔ مجھے فجر فیسٹیول میں اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا، اور میں نے تقریباً 8 مرتبہ قرآنی نمائش میں شرکت کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے کام میں جو خلاقیت موجزن ہے وہ ہمیشہ زندہ اور پائیدار رہے گی، اور اپنے چاہنے والے اور اپنے دوستوں کی وجہ سے یہ کام ہمیشہ باقی رہے گا، اور ہم بھی اسی طرح اپنے عشق اور ولولے کے ساتھ اپنے کام انجام دیتے رہیں گے۔
عشق و علاقه بتونیم که کارهای خودمون انجام بدیم۔
جی ناظرین، پھر سے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں، اور بہت ہی زبردست چیزیں ہم لے کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں آج۔ تو آج کا پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ ایک اور خبر بھی ہے، افسوسناک بھی ہے لیکن دلچسپ ہے، تو اس لحاظ سے میں آج یہ نہیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، بہت مختصر سی خبر ہے، زیادہ وقت بھی آپ کا نہیں لیں گے۔ تو ابھی چلتے ہیں خرم کے پاس اور میں اپنے باری کا انتظار کروں گا۔
جی بالکل صحیح، اور آپ کی باری بھی جلدی آ جائے گی، اور ابھی باری ہماری ہے اور ہم نے جانا ہے ڈاکٹر جعفر رضی خان کے پاس، جو بڑی دلچسپ گفتگو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اور گفتگو اس چیز پہ چل رہی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں انسان، جیسے انسان کا ریسیٹ کا بٹن کسی نے دبا دیا ہے اور وہ ایک بار دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ روح انسان کی آزاد ہو جاتی ہے، روح انسان کی زندہ ہو جاتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پیوریفیکیشن ہے یا سیلف ٹریننگ ہے یا سیلف پیوریفیکیشن ہے، جب آپ اس کی رمضان میں آپ کو ایک فرصت ملتی ہے کہ آپ اس کی ریہرسل کریں، اس کی پریکٹس کریں،
ٹھیک ہے،
تو آپ کے جو ہے آر ریڈی جو ہے، انسان جب نارمل زندگی میں بزی ہوتا ہے، اور جب ہم ایک جو ہے دیکھیں، جب دوسروں کے ساتھ ہارش ایٹیٹیوڈ کے ساتھ پیش آتے ہیں اور صرف جو ہے اپنی خواہشات اور زندگی کی ریس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں،
اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں،
اپنے آپ ایک قسم کی سیلفش اور جو ہے وہ بن جاتے ہیں، تو اس کی نتیجے میں بہت ساری جو ہے وہ برائیاں جنم لیتی ہے، جو ہماری ہمیں جو ہے وہ انڈیویجول طور پہ ہماری فیملی کو اور آن دی ہول سوسائٹی کو متاثر کرتی ہے،
بے حس سے ہو جاتے ہیں،
بے حس سے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کہ ہمارے اندر جسے جو ہے وہ ریلیجیس ٹرمز میں جو ہے وہ حجاب کہتے ہیں، یا پردے پڑ جاتے ہیں دلوں پر، دلوں پر وہ پردوں کا پڑنا، یا جو وہ یوں سمجھے کہ روح کے اوپر جو ہے خاک کا پڑنا، یا مٹی آ جانا، یہ ایک قسم کا اندھیرا سا کریٹ ہو جانا، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ اپنی جو ہے وہ، میں کبھی یہ تو نہیں کہتا کہ کنٹرول کرتے، میں کہتا ہوں کہ ماڈریشن میں آپ کے اپنی جو خواہشات ہیں آپ اس کو ایک خاص لیول میں رکھتے ہیں رمضان میں،
ٹھیک ہے،
تو آپ کے اندر جو ہے وہ ایک احساس پیدا ہوتا ہے، آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو آپ آلریڈی عام دنوں میں نہیں دیکھ پاتے،
ٹھیک ہے،
جو کہ یوں سمجھے کہ جیسے کہ ہماری روایات آیات قرآن میں بھی اور روایات میں بھی آیا ہے کہ آپ جو قربانی کرتے ہیں، نہ تو یہ حیوانات کا خون نہ گوشت خدا کو پہنچتا ہے، بلکہ اس کے اندر سے جو کیفیت آپ کے اندر ایجاد ہوتی ہے، وہ جو تقویٰ کی کیفیت، وہ جو احساس، وہ جو آپ کا جو ہے خدا سے ایک لگاؤ کا جو ہے احساس پیدا ہوتا ہے، उससे ये होता है कि आप जो है फिर अपने आप को जो है वो ये नहीं कि आप अपने आप को बल्कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आप एक सेल्फ डेवलपमेंट के बहुत आला दर्जे पर पहुंच चुके हैं, और उस सेल्फ डेवलपमेंट में आपके जो अतराफ के लोग हैं, आपका जो माहौल है, आपको पूरी सोसाइटी बल्कि एक जैसे आप कह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल जो पूरी ह्यूमैनिटी का के अंदर जो है वो एक आपके अंदर एहसास पैदा होता है, क्योंकि बेसिकली जो कुरान करीम का या जो अदियान इलाही है या इस्लाम का हदफ जो है वो एक फ़कत मुसलमान नहीं बल्कि पूरी जो है वो ह्यूमैनिटी है
पूरा एक,
हाँ, इसीलिए हम कुरान में जो है वो बार बार आए या यू अन्नास ए लोगो,
सही है,
तो यानी पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, पूरी जो सोसाइटीज़ है, फर्स्ट मुमकिन है मुस्लिम्स लिए एक स्टेप्स है जिसमें जो आपको सबका ख्याल रखना पड़ता है,
सही,
तो वो जब धूल
चढ़
जाती है या अंधेरा तारीकी दूर हो जाती है तो इंसान के अंदर जो है वो इंसान एक ऐसा मौजूद है कि जिसके अंदर जो है वो एक पूरी दुनिया समाई हुई है,
ठीक है,
उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज़ है कि वो पूरी दुनिया को जो है मुतहव्विल कर सकता है, तो वो कैसे अपनी फैमिलीज़ को, अपने अतराफ को, अपने दोस्तों को जो है वो एक अच्छाई के रास्ते पे गामजन नहीं कर सकता। और रमज़ान का बेशतर हदफ भी ये है कि ये जो क्वालिटीज़ और ये जो वर्चूज़ और ये जो स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज़ आपके अंदर जो है इसके नतीजा में आपके अंदर क्रिएट होती है, आप उसको जो है पूरे साल में शील्ड करें, उसको प्रोटेक्ट करें,
सही है, उसी तरह उसको आगे बढ़ाएं,
उसी तरह उसको जो है, हाँ, उसको जो है बल्कि आप इसीलिए जो है वो इवन बाद रिवायात में मतलब मुस्तहब रोज़े हैं कि बाद साल में आप एक दफ़ा किसी दिन रख सकते हैं,
बिल्कुल सही,
या ये ख़ास दिनों में जो है रिवायात में आया, तो इसका मतलब ये कि आप जो है जो इस दुनिया के अंदर ये जो ज़िंदगी की रेस है, ये जो मटेरियलिज्म की रेस है, यहाँ पे इंसान जो है सेल्फिश के अलावा अपने आप के अलावा किसी को देखता भी नहीं है,
सही,
और ये कि और इसके नतीजे में अपनी ज़िंदगी भी ख़राब कर बैठता है,
ज़ाहिरी बात है, माशरे में जब आप रह रहे हैं तो आपको सबको देखना
है, यानी वो पैसा, वो शोहरत, वो जो आपके अगर आप अर्न भी कर लेते हैं तो वो आपको किसी काम की नहीं होती।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू को जारी रखेंगे आपके साथ। यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे आपके सामने उठाऊंगा अगले हिस्से में, और वो ये रहेगा कि कुछ लोग कहते हैं कि माह रमज़ान में भी कि भाई हमारी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, मैं तो काम करता हूँ, मैं कैसे रोज़े रखूँ, और जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसी गर्मी में कौन रोज़े रखता है, ये सवाल उठते हैं। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऐसे लोग, इसका मतलब फिर वो जो एक रूह का ताज़ा होना, एक नई ज़िंदगी मिलना, फिर ऐसी चीज़ों से वो महरूम रहते हैं, तो इस पर आपसे मैं पूछूँगा, मैं बात करूँगा। चलते हैं अभी हसन के पास और देखते हैं हसन।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि ऐसे लोग हमेशा बहुत ही यानी आम हालात में, शायद इस सिलसिले में हमारे नाज़रीन ने वीडियो क्लिप्स ये सब भी देखी हूँ कि बहुत ही ज़्यादा है आजकल इंटरनेट पर और मुख्तलिफ सोशल नेटवर्क्स पर कि आम हालात में आप पूछें अजान का टाइम कब है, किसी को कुछ नहीं मालूम होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, खुद जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। और इन दिनों में तो 7:53 और इतने सेकंड पर अजान है,
बिल्कुल सही,
जोहर की अजान तो ज्यादा नहीं मालूम होता है, मगरिब इशा की ज्यादा याद रहते हैं और सुबह की अजान तो जितना खा सकते हैं। तो हम लोगों को वाकई सोचना चाहिए कि क्या इसी चीज के लिए बस हम लोगों को एक फाका करने के लिए खुदा ने ये सब कहा है, या वाकई रोजे का कुछ और मतलब, हम लोगों को वाकई सोचना चाहिए इसके बारे में। नाज़रीन, हम लोग चलते हैं इस वक्त एक वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, बहुत ही अच्छी आपके बहरहाल अशआर तो और कलाम, बेहतरीन कलाम आपकी खिदमत में पेश किया गया, और हम लोगों की गुफ्तगू जारी है इस वक्त डॉक्टर जाफर रजी खान साहब से माह मुबारक रमज़ान के हवाले से। अच्छा, इस हफ्ते में बहरहाल बहुत सारे मुनासिबतें दरपेश हैं। कल इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, नवासे रसूल, जिनके बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हमारे बेटे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ, तो इस हवाले से जो भी आप कहना चाहें, फेसबुक आपके लिए तैयार है, facebook.com/SUT Morning Show। चलते हैं खुर्रम के पास।
बहुत शुक्रिया हसन जी। डॉक्टर जाफर अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने आपसे सवाल पूछा कि कुछ लोग जो है वो अजीब गरीब किस्म के बहाने और अजीब गरीब किस्म की वो क्या कहते हैं लॉजिक लाते हैं ऐसी चीज़ों में, अलबत्त बारे में हम आज जहाँ लॉजिक, उनकी लॉजिक या उनके जो सवाल जो वो उठाते हैं उस पर बात नहीं करेंगे। सर, ये बात करेंगे कि ये जो एक महीना जो एक अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने हमें दी
जी,
जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा अपॉर्चुनिटी दी
जी,
तो उससे तो महरूम हो गए क्या नुकसान उन्हें उठाने पड़ेंगे?
देखिए, एक बात तो ये कि इस्लाम जो है वो एक रिलीजन ऑफ मॉडरेशन है,
ठीक है,
ये एक जो है वो दीन है, जिसे कहते हैं कि इस्लाम में मियाना रवी पे बहुत ज़्यादा ताकत,
शिद्दत पसंद ही नहीं है
कहीं पे भी। अगर कोई इस्लाम में अगर कोई मरीज है, अगर कोई जो है वो एल्डर है,
ठीक है, बूढ़ा है,
बूढ़ा है, या अगर किसी को जो है वो हद से ज़्यादा इवन ये कि आदत डिवेलप हो चुकी है कि दिन में फ़र्ज करें बहुत ज़्यादा पानी,
ठीक है,
कोई भी रीज़न है, मैं अभी उस रीज़न पे नहीं जाऊंगा फिकी हवाले
जी, बिल्कुल,
बल्कि जिसकी वजह से जो है वो रोज़ा जो है
नहीं
वो
रख सकता,
नहीं रख सकता, ठीक है, तो इस्लाम जो माह रमज़ान ये नहीं है कि उन अफराद के लिए नहीं है,
ठीक है,
उन्हें भी ये चाहिए कि अगर वो रोज़ा नहीं भी रख रहे तो फिर भी मैक्सिमम रिस्ट्रेन करें। रिस्ट्रेन का मतलब ये कि अगर उन्हें दिन में जो है वो माह रमज़ान की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए,
ठीक है,
ये अय्याम जो है वो मुबारक है और डिवाइन डेज हैं या ब्लेस्ड डेज हैं, तो इसमें ये कि अगर वो जो है पानी कम से कम पे जो है वो सिर्फ रिस्पेक्ट कर सकता है, यानी कि दिन में बैठ के दिन में बैठ के जो है वो खाना खाया जा रहा
है,
जो मैक्सिमम रिस्ट्रेंस है, अगर वो आधे गिलास के पानी से जो है वो
गुजारा कर सकते
हैं, इवन ये कि अपने दरमियान और खुदा के दरमियान भी है कि मेरे अंदर तवानाई नहीं है, लेकिन ये कि मैं सिर्फ जो है अपने साथ ऐद कर ले कि सिर्फ जो है वो हाफ जो है वो 8 घंटे के बाद जो है एक आधा गिलास पानी का पीऊंगा, बीमारी की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से।
एहतराम आप कर रहे हैं।
हाँ, अब उठ के बल्कि सहरी भी
खाएं, जी बिल्कुल
खाएं, लेकिन रोजा की नियत से ज़ाहिर बात है जब वो रोजा नहीं रख रहा तो
लेकिन
बारह यहाँ के दिन में जो है जैसे दूसरे रोजादार प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसी ही शो करें, कोशिश करें,
बिल्कुल,
तो उससे और फिर ये कि रमज़ान के अंदर जो है फ़र्ज करें कि ये जो है कहा गया है कि आप कुरान करीम पढ़ें,
सही है,
आप ये जो है ये दुआएं जो है पढ़ें और अपने अंदर जो अपने मुआशरे के अंदर अपने घर के अंदर अपने जो है सोसाइटी के अंदर एक जो मानवियत और स्पिरिचुअलिटी की फ़ज़ा है उसको बरकरार रखें। फ़र्ज करें ख़वातीन के लिए बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से वो रोज़ा नहीं रख सकती, तो मेरा मतलब ये है कि एक सब जो है क्लासेस के लिए जो है उस बात का ख्याल रखा गया, उसके बावजूद ये चाहा गया कि रमज़ान की जो वो स्पिरिचुअलिटी और मानवियत की फ़ज़ा उसको बरकरार रखें ताकि उसके नतीजे जो है सब अफराद के लिए जो है वो सोसाइटी के लिए मुरतब हो सके और उनकी शख्सी ज़िंदगी पे भी पर्सनल लाइफ पे भी अच्छे असर।
बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपके साथ जारी रहेंगे हम लोग। नाज़रीन, डॉक्टर जाफर रज़ी खान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में और उनसे हमारी गुफ्तगू चल रही है और इंशाल्लाह आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम चलेंगे हसन के पास, देखते हैं हसन आप लोगों के लिए क्या लेके आए। जी हसन,
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, और यहाँ से अगर जगह हुई निकलने की, हाँ है थोड़ी बहुत, तो आपकी खिदमत में हम 2-3 नुकात हम पेश करने जा रहे हैं। एक बहुत ही अहम नुक्ता ये है कि जो हम लोगों ने मुकाबला आप लोगों को बताया है, जो तस्वीरी मुकाबला होगा, आप लोग तस्वीर लेके आपके आसपास रमज़ान में क्या हो रहा है वो भेजेंगे, तो एक तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि जो हमने पिछले हफ्ते आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था वो ये है कि आप लोग जो तस्वीर भेजें उसमें आप माहौलियात का कितना ख्याल रख रहे हैं, इफ्तार के वक्त, सहरी के वक्त, या दिन भर आपने जो बहरहाल हर एक हर इंसान जो है उसमें बताया जाता है दिन में आधे किलो से ज़्यादा उसे कूड़ा जो है वो यानी मुआशरे को नहीं देना चाहिए, आप यूँ समझिए, तो आप उसको बेहतर बनाने के लिए, अपने इस आदत को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, तस्वीर के ज़रिए हम लोगों को दिखाइए और यकीनन हम लोग उस पर ख़ास नज़र रखेंगे और उसको हम लोग तरजीह देंगे दूसरी तस्वीरों पर। तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं जो तेहरान में इस वक्त नुमाइश हो रही है इफ़ाफ़ और हिजाब के नाम से, यानी हया और हिजाब, इस नाम से एक नुमाइश मुनक़िद हुई है और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ़ किस्म के हिजाबों की नुमाइश की गई है, जो कह सकते हैं मगरबी अफ्रीका से लेकर और मशरक़ी एशिया तक मुख्तलिफ़ किस्म के जो हिजाब लिए जाते हैं ख़वातीन और मर्दों में, तो वो उसकी नुमाइश की गई है, बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ है अवाम में यहाँ पर, और अभी फ़िलहाल तो कौमी सतह पर है लेकिन कहा जा रहा है अगले चंद साल के अंदर ये बैनुल अक़वामी सतह पर आ जाएगा। वैसे 1-2 साल पहले जो मैं गया भी था वहाँ पर, मैंने देखा था कि मलेशिया, तुर्की और कुछ दीगर ममालिक से भी आए थे लोग, इस साल बहरहाल वो लोग नहीं हैं, लेकिन लोकल कंपनियाँ ईरान की अच्छी खासी बड़ी तादाद में वहाँ पर आई हैं। ख़ुद ईरान में मुख्तलिफ़ किस्म की, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की चादरें या अबाया जैसे कहा जाता है वो डेवलप की गई हैं, उनकी नुमाइश की गई है और बहुत ज़्यादा भत्ता यानी बच्चों में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं एक छोटी सी बच्ची जो है वो बहुत ज़्यादा खुश खुश घूम रही है वहाँ पर, और मुख्तलिफ़ प्रिंट्स और ये सब और इसमें एक ख़ास बात पर ताकीद की गई है कि हर मुल्क के लिहाज से उस मुल्क के कपड़े को इस्तेमाल किया जाए, और ये इस नुक्ते को यानी याद रखना चाहिए, सिलसिले में हदीस भी मौजूद है कि बहरहाल वाजिब है मुसलमानों पर कि जो उनके मुल्क में उस पैदावार होती है वही पहने। ये यकीनन एक इक्तिसादी लिहाज से और आप हर लिहाज से देखिए सामाजिक लिहाज से हमारे माशरे के लिए बेहतर है कि उसकी जो यानी मामूल की ज़िंदगी है उस पर अमल करते हुए हम लोग खुदा की इताअत करें। चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आजकल एक बहुत ही अहम मसला जो आलम इस्लाम को दरपेश है वो सहूनियों की जारहीत है गज़ा पट्टी में और खसूसी तौर पर यानी फ़िलिस्तीन में उमूमी तौर पर। वहाँ पर अभी गज़ा पट्टी में जो बमबारी हुई है उसमें और यानी माफ़ कीजिए फ़िलिस्तीन में जो धमाके किए गए और घरों को तबाह किया गया है, और वहाँ पर देखा गया कि एक घर पे बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में लिखा गया था जिस घर में जहाद इस्लामी ग्रोह के एक ब्रिगेड के कमांडर को शहीद किया गया, उनके दो भाई एक बच्ची एक बेटा और उनके अहलिया को शहीद कर दिया, उनकी माँ को शहीद कर दिया गया था। तो वहाँ पे उनके घर के ऊपर जो तकरीबन तबाह हो गया है पूरा लिखा है कि हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, इस घर के रहने वाले आपका इस्तकबाल नहीं कर सकते इसलिए कि वो जन्नत जा चुके हैं। तो बहरहाल हम लोगों को ख़ास ख्याल रखना चाहिए इस दौर में, जो कोई जुल्म के कह सकते हैं कि चंगुल में फंसा हुआ है कम से कम उसके लिए दुआ करें, वरना हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि बाज़ लोगों को यानी अफसोस होता है सुनते हुए कहते हैं कि भाई अगर यौमुल कुद्स बनाया जाता है ये ईरान का मसला है, हालांकि आलम इस्लाम का मसला है और यकीनन क़यामत के दिन इसके बारे में हमसे सवाल किया जाएगा कि तुमने दूसरे मुसलमानों के लिए किया क्या। चलते हैं खुर्रम के पास।
बहुत शुक्रिया हसन। डॉक्टर जाफर रज़ी खान नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं और हमारा मौजूद डॉक्टर साहब के साथ चल रहा था कि माह रमज़ान के इंसानों की ज़िंदगियों पर क्या असरात होते हैं, और बहरहाल डॉक्टर साहब गुफ्तगु जो है हमारी इख्तिताम पर पहुँच रही है, मुख्तसर सा वक्त है हमारे पास, क्या निचोड़ निकालेंगे आप इस मौजू का?
देखिए वही बात ये कि रमज़ान में जो है जो अफराद इवन रोज़े नहीं भी रख सकते, जो टोटल एक मानवियत की फ़ज़ा है और उसकी जो रिस्पेक्ट है वो उस पूरी सोसाइटी को जो है वो करनी चाहिए ताकि उसके जो असरात जो मैक्सिमम उसके नतीजे और जो आउटपुट है या उसके असरात है वो मुआशरे पर पड़ सके। और इसके अलावा जो दूसरे मुसलमान जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में रह रहे हैं उन्हें भी ये चाहिए कि दूसरे रिलीजन्स के अफराद को इस जो रमज़ान है उसकी स्पिरिचुअलिटी के लिए जो है उसे उसके जो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव्स हैं उनसे रोशनास और आशना करवाएं, और उसके साथ जो है उन्हें अपनी अफ्तारी में अपनी दावत करें, उनके साथ जो है वो अपनी अफ्तारी जो है वो शेयर करें।
सही है।
और जो उसके जो है अफराद इसके जो चैरिटी के आस्पेक्ट्स हैं, इसके जो इन्फाक के आस्पेक्ट्स हैं, इसके लिए जो गरीबों के और जो मुआशरे की सोशल बहबूद के लिए जो है वो एक एहसास और जो लोगों के अंदर एक जो जज्बा पैदा होता है वो उससे जो है उनको भी उजागर भी करे और मुआशरों पर अपने इस्लामी मुआशरों पे और जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी पे इसको जो है एक अप्रॉक्सीमेटी जो है वो दूसरे रिलीजन्स के दरमियान यूज़ करें, क्योंकि रोज़ा जो है ऐसी चीज़ है जो कि दूसरे अदियान में भी जिसका कॉन्सेप्ट मौजूद है।
सही।
और ये एक जो है इस हवाले से ये ज़रूरी है कि एक रोज़ा जो है वो उसको यूज़ किया जाए एक यूनिटी ऑफ डिवाइन रिलीजन, और हम भी अपने इख्तलाफात जो सेक्टेरियंस है उसको बुलाकर जो है मुसलमान सब इकट्ठे हों, अफ्तार एक दूसरे से शेयर करें, सहारी शेयर करें। तो इसके रमज़ान के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं जो अभी तक जो है जिसका जो है पोटेंशियली तौर पर जो है और प्रैक्टिकली तौर पर जो है जिसका यूज़ किया जा सकता है, और हम अभी तक जो है उसको जो उसके जो मिनिमम है वो हम अभी उस पर जो है अभी इक्तफा कर रहे हैं, इसे कहीं बढ़ के जो है वो
इसका
इस्तेमाल किया जाए।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर और बड़े अहम मौजू पर बहरहाल हमने जो है मुख्तलिफ जावियों से इसके ऊपर नज़र डाली, और ऐसे जाविये जो आम इंसान की नज़र में आते हैं और कोई ख़ास बहरहाल हमने कोई इतनी गहराई में नहीं गए, लेकिन ऐसी बातें आज हमने की जो वाकई हम लोगों को मालूम है लेकिन उनका दोहराना अपने जहन में बहुत ज़रूरी है। यही कि रमज़ान के फवाइद में बहुत से ऐसे फवाइद हैं जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, जो हम लोग जिनको बहुत अहमियत नहीं देते। सिर्फ अहमियत ये है कि जी सुबह खाना है और अफ्तार के टाइम पे खाना है, तो इसके अलावा जो उसके और फवाइद हैं उसके ऊपर भी रोशनी डाली जाए, उसके ऊपर सोच विचार की जाए और उनको भी अहमियत दी जाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप तशरीफ लाने का। जी हसन,
मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ आप दोनों का। और नाज़रीन, इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत शहर है शुमाल मशरक़ी ईरान में वाक़ इस वक्त तेहरान में और मरकज़ी ईरान में टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 40 डिग्री और उससे ऊपर है, लेकिन उस इलाके में आजकल बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, 20-25 से ज़्यादा है ही नहीं। तो चलते हैं, वो एरिया कौन सा है वो आपको हम दिखाते हैं, मरन शहर। जी नाज़रीन, फिर से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मरन शहर आप लोगों ने देखा, बहुत ही खूबसूरत शहर है देखा आप लोगों ने। और इस वक्त हमारे साथ मशाहिद आलम रिजवी साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
मौलाना साहब, सवाल है कि शब कद्र के यानी शबें दरपेश हैं, तो इस हवाले से अहमियत उसकी क्या है, हम लोगों को क्यों तैयारी करनी चाहिए उसके लिए?
मैं सबसे पहले आने वाली जो शब है और रात है और ख़ास तौर से जो दिन 15 माह मुबारक रमज़ान का है, मैं उस सिलसिले से सिबत अकबर हज़रत इमाम हसन मुश्तबा की विलादत की मुनासिबत से आपकी खिदमत में और तमाम नाज़रीन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपके लिए ये दिन बहुत मुबारक हो।
और यकीनन ये जो सवाल आपने फरमाया है, शब कद्र आज से नहीं इस्लाम से पहले अहम रही है और तमाम अंबिया के लिए ये शब बहुत अहम है। क्यों? इसलिए कि इन्हीं शबों में अल्लाह ने अपनी किताब को जो हिदायत बन करके आई उसे नाजिल किया, ख़ास तौर से कुरान मजीद इसी शब में नाजिल हुआ। और ये वो रात है कि जो हज़ार माह से तन्हा खुद बेहतर और बरतर है, यानी एक रात जिसे हम शब कद्र के नाम से जानते हैं वो माह मुबारक रमज़ान में है और तीन शबों में तकसीम है, तकरीबन 19 यानी शब 19 और शब 21 और शब 23, इसको शब कद्र कहा जाता है। इसमें चूँकि इंसानों की तकदीर और उसके लिए मकाम और मंजिलत और रुतबे जो अल्लाह की जानिब से आइंदा साल तक उसके लिए हो सकता है, सब कुछ इसी शब में मुअय्यन होता है और इसमें इसको कतई और यकीनी बनाया जाता है। इसमें आमाल हैं, अगर कोई रात भर इस शब में जगे और अल्लाह से राज़ो नियाज करे तो उसके लिए ये है कि अगर उसके माजी में कितने ही गुनाह क्यों ना हो, चाहे वो सितारों के बराबर क्यों ना हो, चाहे उसका वज़न पहाड़ों के बराबर क्यों ना हो और दरिया के इतनी उसकी वसअत क्यों ना हो, वो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है और उसे बख्श देता है। इसी रात में ज़ियारत के लिए कहा गया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, इसका बहुत ज़्यादा सवाब रखा गया है। और अगर कोई यानी ये ज़ियारत जा करके खुद करबला में पड़ता है और वहाँ रोज़े पे हाजिर होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फजीलत जिक्र हुई है। यानी ये पूरी जो शब कद्र की रात है इसमें इंसान को चाहिए कि जगे और जग करके इबादत करे और तौबा इस्तिग़फ़ार करे, क्योंकि ज़िंदगी भर वो मसलन सोता है, बहरहाल एक रात ऐसी रात है कि जो जगने की रात है, यानी वाकयान अल्लाह से कुछ लेने की रात है। और अल्लाह ने वादा किया है कि इस रात में जो जगता है, जो अहिया करता है, हम उसे बहुत कुछ इनाम और इकराम देते हैं, यहाँ तक कि जितने भी आमाल इसमें दर्ज हुए हैं सबका अलग अलग अपनी जगह उसका फ़ायदा है, उसकी फजीलत है। मसलन शब कद्र में हज़ार बार सूरह इन्ना अंजलना पढ़ने के लिए कहा गया है और इसकी तिलावत इंसान के यकीन में इजाफा करता है।
बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, इंशाल्लाह अगले शबों में भी इसके और अगले दिनों में वैसे हम लोग बात करेंगे अगले शबों के बारे में,
अभी से तो, आप जो है शब कद्र की फिक्र में।
हाँ बिल्कुल, तो इस हवाले से इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करेंगे और आपको जहमत भी हम लोग जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, इसमें ईसाइत में मौजूदा ईसाइत में यूँ कहूँ एक चीज़ है, एतराफ़ करना।
ठीक है,
अपने गुनाहों को वो कर दिया और माफ़ कर दिया गया। ये हवाले से मैं इंशाल्लाह ज़रूर
बात करेंगे, बिल्कुल
बात करेंगे कि ये वाकई क्या हम लोगों में भी यही है कि एक एतराफ़ कर दिया बस ख़त्म। तो इसके हवाले से इंशाल्लाह आपसे ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कल हम लोग के मेहमान।
कल हमारे साथ डॉक्टर ज़हीर अब्बास होंगे और जिल्द के मसाइल के पर इंशाल्लाह वो गुफ्तगू करेंगे।
SUT मॉर्निंग शो पे आपका इंतजार करेंगे, कल तक हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।